जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جہنم اور نفاق سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی ہمارے سلسلہ کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور موضوع ہے خرید و فروخت، بزنس، ٹریڈنگ۔ اس سے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، ایک مسلمان کو دنیا میں جب خرید و فروخت کرنے کی جب بھی ضرورت پیش آئے تو اسے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ابتداءً حدیث پاک کی طرف بڑھتے ہیں، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہ کرے گا کہ کہاں سے لیا، کہاں سے لیا، حلال سے یا حرام سے، یعنی اس کے پاس جو مال آ رہا ہوگا اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے پر فی زمانہ غور کریں تو واقعی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ پرواہ نہ کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ان کو یہی معلوم نہیں کہ اس بارے میں حلال یا حرام کا حکم کیا ہے، یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے اس بات کے بارے میں نہیں جانتے، علم دین سے دوری ہے جس کی بنیاد پر وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پاتے، اور جو بھی مل رہا ہوتا ہے اسے وہ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کئی وہ افراد بھی ہیں کہ جنہیں حلال حرام کا بھی معلوم ہوتا ہے، یا کم از کم بہت واضح جو حلال حرام ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، مگر وہ اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے یوں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب کاروبار میں تو سب کچھ چلتا ہے، حالانکہ نہیں چلتا، صرف حلال ہی چلتا ہے اور حلال ہی باقی رہتا ہے اور حلال ہی میں برکت ہوتی ہے، حرام نہ چلتا ہے نہ باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس میں برکت ہوتی ہے، بلکہ وہ آپ کے دوسرے حلال مال کو بھی لے کر چلا جاتا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں بہت سارا گناہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم جب بھی کوئی مال لیں تو یہ دیکھ لیں کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے، اس کا سورس جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کو اس پس منظر کے اندر بھی دیکھنے کی حاجت ہے کہ بعض لوگ خود جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں تو بہت احتیاط کرتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں سے مال لے رہے ہوتے ہیں، دکاندار ہے، کہیں سے مال جو ہے وہ لے رہا ہے، اب اس معاملے کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ تو اس کا معاملہ ہے نا، اس نے اگر غلط کیا تو اس کے سر کے اوپر ہے جناب، میں تو پیسے دے کے چیز لے رہا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں، کئی صورتوں کے اندر آپ کو پیسے دے کر بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مارکیٹ ہوتی ہیں جو چور بازار کے نام سے مشہور ہوتی ہیں، پتہ ہے کہ وہاں پر چوری کا مال جو ہے وہ بکتا ہے، تو جب غالب گمان ہے کہ یہ چوری کا مال یہاں پر بکتا ہے تو اب وہاں سے اس وقت تک مال خریدنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کو غالب گمان اس بات کا نہ ہو جائے کہ نہیں جناب، یہ مال چوری کا नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर माल ही जो है वो चोरी का हो, दूसरा माल भी जो है वो बिकता होगा। तो मगर जब वो जगह ही मशहूर व मारूफ इस तरह की है कि यहाँ पर चोरी का माल लाकर बेचा जाता है, तो अब वहां पर खरीदते वक्त ये सोचना कि भाई हम तो पैसे देकर खरीद रहे हैं ना, अब पीछे वाला चोरी करके लाया उसका गुना उसके सर होगा, उसका गुना यकीनन उसके सर होगा, लेकिन आपको भी वो खरीदने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह और बहुत सारी चीजों के अंदर होते हैं, कई जगहों के ऊपर अक्द फासिद हुए होते हैं, शरई एतबार से वो नाजायज होते हैं और हमें उस बात का पता भी होता है, मगर उसके बावजूद जो है वो हम आगे उससे माल जो है वो खरीद लेते हैं। तो इसकी इजाजत हरगिज नहीं है कि ऐसा करना कई सूरतों के अंदर नाजायज होता है। तो हमें अपना फेल भी देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हलाल तरीके से कर रहा हूँ या हराम तरीके से कर रहा हूँ, और हराम से बचना जरूरी है। यूं ही दूसरे की तरफ से अगर कोई इस तरह का माल मैं ले रहा हूँ, अगरचे पैसे देकर ले रहा हूँ, तो वहां भी जो शरई अहकाम है कि किससे खरीदो फरोख्त की इजाजत है और किससे नहीं है, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। इस मामले में लापरवाही बरतना हमें कहीं हराम की तरफ ना ले जाए। आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और उन्हें भी शामिल सिलसिला करते हैं। जी कॉल्स।
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि ये जो बिलियट है इसकी कमाई के बारे में क्या हुक्म है, थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैरा।
जी मजीद कौन।
मेरा ये सवाल है, एक इस्लामी भाई नमाज पढ़ रहा था तो जिसकी पहली रकात छूट गई, चार रकात की नमाज थी, इमाम के साथ पढ़ रहा था। अब इस सूरत में उसकी मसबूक नमाज हो गई, एक रकात जो बची उसे तनहा पढ़नी थी, तनहा पढ़ने में उसने सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर लिया, सूरत नहीं मिली।
जी पहला सवाल है कि ब्लेड की कमाई जो है वो क्या है। शतरंज खेलने की इजाजत नहीं है, मुतलकन जो है वो मना है। लहवो लाइब फकत यही नहीं, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ गेम्स होते हैं जिनका लोग जो है वो कारोबार करते हैं और वो बाकायदा जो है वो उसमें खेल के ऊपर जो है वो उसके पैसे चार्ज करते हैं। मुख्तलिफ गेम हैं, वीडियो गेम्स भी हैं और भी दीगर हैं। तो गेम खेलने की मुतलकन जो है वो ममानात है, और उस एतबार से जो लहवो लाइब, क्योंकि खेल जो है वो लहवो लाइब है, तो लहवो लाइब पर इजारा नाजायज है, इसकी आमदनी हलाल नहीं। अलबत्ता एक ये है कि जैसे झूले लगे हुए हैं और उन झूलों में म्यूजिक नहीं है और उस झूले पर जो है वो बच्चों को बिठा कर झूला दिलाने की उजरत ली जाती है, तो वो तो जायज़ है, उसमें हरज नहीं है। लेकिन जो मुख्तलिफ ओवरऑल गेम हैं, वीडियो गेम हैं, या शतरंज है, या स्नोकर है, या जो है वो डब्बू है, तो ये लहवो लाइब हैं और इनका खेलना भी जायज़ नहीं है, और इनके ऊपर उजरत लेना, उजरत के ऊपर किसी को देना और फिर उससे उजरत लेना, ये जायज़ नहीं है, इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। दूसरा सवाल हमारा ये कि अगर कोई शख्स जो है वो इमाम के साथ दूसरी रकात में शामिल हुआ, पहली उसकी छूट गई, और जब अपनी रकात फौत शुदा पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो उसमें सूरह फातिहा उसने पढ़ी और भूल गया सूरत पढ़ना, तो अब क्या करे? तो आखिर में सजदा सहव कर ले तो नमाज हो जाएगी। अगर तो रुकू में गया और याद आ गया उसे कि मेरी सूरत छूट गई है, तो हुक्म ये है कि वापस आए, सूरत पढ़े और फिर दोबारा रुकू करे और आखिर में सजदा सहव करे। लेकिन अगर उसको जाके बाद में याद आता है तो आखिर में सजदा सहव कर ले तो उसकी नमाज अदा हो जाएगी। जी मजीद कौन।
मैंने ये पता करना था कि कुछ अर्सा पहले मेरी दुकान थी एक छोटे शहर में और हैदराबाद से सामान उठाता था मैं, तो उसमें कोई बिल जब चेक करते थे तो किसी में मैंने कुछ कोई चीज उनसे लेनी होती थी, पैसे उनसे कुछ ज्यादा, और किसी बिल में ऐसा होता था देने पड़ते थे, तो वो काफी अर्से तक मैं जमा करता रहा, बिल याद नहीं रहते थे। जब मैं हैदराबाद जाता था तो वो काफी अर्सा मेरी जेब में पड़े रहे, फिर मैंने दुकान छोड़ दी, कारोबार बंद कर दिया, वो बिल पता नहीं कहाँ गए। अब आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएं कि वो बिल जिसमें कमो पेशी थी उसको कैसे उसका अजाला किया जाए, जबकि अब मुझे ये भी नहीं पता कि किस दुकान पर लेना था और किस दुकान पर देना था। बड़ा मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
जी मजीद कौन।
मुफ्ती साहब की बरगाह में अर्ज है कि जो नमाज में तशहुद में हम उंगली उठाते हैं इसके बारे में मसला वाज़े इरशाद फरमा दे।
जी पहला सवाल कि कारोबार पहले कारोबार था और उसमें बहुत सारे लोगों का देन भी था कि अदा भी करना था, बहुत सारों से वसूल भी करना था, और अब वो बिल्स जो है वो गुम हो गए, कारोबार भी बंद कर दिया, तो अब क्या किया जाए? देखें, जो आपने वसूल करना था वो तो आपके अख्तियार में है कि आप उन्हें माफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपने देना था वो बहरहाल आपको देना होगा या उन लोगों से माफ करवाना होगा। अमूमन जब कारोबार बंद किया जाता है तो उस वक्त ये सारा लेन देन का मामला जो है वो निपटा दिया जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं निपटाया तो बहरहाल अब आप पर लाजिम यही है कि हत्तल इम्कान जो है वो उन अफराद को तलाश करें, अगर तो बिल तलाश करना मुमकिन हो तो उन्हें तलाश करें, खुद जहन पर जोर देकर अगर याद आ जाए कि फुलां के इतने देने थे तो फुलां से जो है वो राबता करके उतने उसे दें या फिर उससे माफ करवाएं, और अगर ये भी ना हो तो फिर थर्ड ऑप्शन ये है कि जिन जिन अफराद से आप डीलिंग जो है वो करते थे उन अफराद से जो है वो राबता करके उनको बता दें कि भाई आपका शायद हो सकता है मेरे ऊपर कुछ जो है वो डैन बनता हो जो मैंने आपको देना हो, लेकिन अब मैं भूल गया हूँ, तो अगर तो आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ है कि उसके पास भी जो है वो रिकॉर्ड तो होगा कि वसूल करना है उसने इतना, तो वो आपको वो रिकॉर्ड दिखा दे और आप उसके मुताबिक अदा कर दें, या वो फिर आपको माफ कर दे कि उससे माफ करवा लें कि भाई जो भी मेरा जो है वो अगर कोई देन बनता है आपके ऊपर कि आपने मुझे देना था तो मैंने आपको माफ किया, तो अगर यूं इस तरह माफी मिल जाएगी तो फिर बहरहाल जो है वो आफियत वाली बात है कि फिर जो है वो आप बच जाएंगे, वरना बहरहाल किसी का भी अगर इस तरह देन है तो वो अदा करना जरूरी है, और अगर अदायगी नहीं की, दुनिया में माफ भी नहीं करवाया, तो कल कयामत के अंदर बिल्कुल उसके ऊपर पकड़ हो सकती है। हुकूकुल इबाद का मामला है, बंदों का मामला है, बंदों के माफ करने से ही माफ होगा। आज दुनिया में तो लोग माफ कर देंगे, कल कयामत में माफी बहुत मुश्किल होगी। कल कयामत के अंदर हर शख्स जो है वो अपनी नेकियों के लिए जो है वो दूसरे से झगड़ रहा होगा, तमाम हुकूकुल इबाद में एक दूसरे से झगड़ रहा होगा कि किसी तरह इसकी नेकियां जो है मुझे मिल जाएं, क्योंकि उस दिन जो हुकूकुल इबाद का फैसला होना है वो नेकियों के जरिए से होना है कि जिसने हक अदा करना है उसकी नेकियां जो है वो दूसरे शख्स को दी जाएंगी, बल्कि अगर नेकियां खत्म हो गई तो जिसने हक लेना है उसके गुनाह जो है वो हक देने वाले के सर पर डाले जाएंगे, तो कल कयामत का मामला बहुत सख्त होगा। लिहाजा आज ही उस मामले को हल करके माफ करवाने की या अदा करने की कोई भी कोशिश लाजमी तौर पर करें। दूसरा सवाल हमारा था तशाहुद में उंगली उठाना। तशाहुद के अंदर उंगली उठाना सुन्नत है। जब अशहदु अल्लाह पर आप यूं बिल्कुल सीधा जो है वो हाथ रखे हुए होते हैं, और जब आप अशहदु अल्लाह के ऊपर पहुंचते हैं तो आप यूं उंगली जो है वो बंद करते हैं और ला के ऊपर आप जो है वो उंगली उठाते हैं, और ला इलाहा इल्ला के ऊपर जो है वो आप उंगली गिरा लेंगे और तमाम उंगलियां सीधी कर लेंगे। ये तरीके कार है तशहुद के अंदर उंगली उठाने का। जी, मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और कुछ मैसेजेस भी जो है वो आपके हम शामिल करते हैं। एक सवाल ये है कि गैर मुस्लिम जो है वो रहते हैं, वो अपने मजहबी त्यौहार पर मिठाई वगैरह देते हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? सादिक उमर कोट से हैं हमारे। गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार पर उनको मुबारकबाद देना या उनकी मुबारकबाद या उनसे तहाइफ लेना ये जायज नहीं है। इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानात की गई है, बल्कि अगर कोई शख्स बतौर ताजीम कुफार के मजहबी त्यौहार पर इस तरह जो है वो लेन देन करे या मुबारकबाद दे तो उस पर फुकाहा ने हुक्म कुफर तक बयान फरमाया है। तो हरगिज़ हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार पर उनसे तहाइफ का लेन देन करें। एक सवाल ये है कि पोस्ट ऑफिस में पिछले महीनों में या पिछले जमाने में 6 माह के बाद प्रॉफिट मिलता है जो आप पैसे जो है वो रखते हैं, तो अब जकात का बताएं कि 1 ईयर के बाद प्रॉफिट लेना जो है वो जायज है या नहीं, और जकात का क्या हुक्म होगा? पोस्ट ऑफिस वगैरह में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की जो स्कीम्स हैं, ये जो इदारे हैं कौमी बचत वगैरह के, इनमें जो पैसे रखवाए जाते हैं और उस पर जो प्रॉफिट मिलता है वो सूद होता है, क्योंकि कर्ज की बुनियाद के ऊपर पैसे रखते हैं, जितने आपने पैसे जमा करवाए हैं वो उतने ही आपको वापस करेंगे और इसके ऊपर वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मंथली जो है वो दे रहे होते हैं, तो ये सूद है, जैसे कि हदीस पाक में है कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफियातन फहुवा रिबा, हर वो कर्ज जो नफा खींच कर लाए वो सूद है। तो सूद हराम है, मुसलमान के लिए सूद खाने की किसी भी सूरत में जो है वो बिला जरूरत शरई इजाजत नहीं है। तो बहरहाल इससे बचना जरूरी है। अगर पहले ऐसा कर लिया है तो अल्लाह अज़्ज़वल की बारगाह में सच्ची तौबा भी करें, और अब तक जितनी रकम सूद की मद में हासिल की है वो शरई फकीर को सवाब की नीयत के बगैर सदका करना लाजिम होगा। और जहां तक ज़कात का ताल्लुक है तो जो सूदी पैसा है उसके ऊपर ज़कात नहीं होती, क्योंकि ज़कात तो हलाल माल पर जो है वो 2.5% लाजिम होती है जबकि वह निसाब की मकदार को पहुंचे और दीगर शराइत पाए जाए। जो हराम माल है वो तो टोटल का टोटल पूरा 100% ही जो है वो सदका करना ज़रूरी है, और उसके जो भी अहकाम है बाज़ सूरतों में मालिक को वापस देना होता है, बाज़ सूरतों में सदका करना होता है, लेकिन वो तो 100% होता है, तो उस पर ज़कात 2.5% देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो तो टोटल ही आपको जो है वो उसके हुक्म पर अमल करते हुए सदका करना होगा। हाँ, जो आपने अपनी रकम जमा करवाई हुई है उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी और हर साल जो है वो उसके ऊपर लाजिम होती रहेगी। अगर आपने किसी जगह पर जमा करवा दिए हैं पैसे और आपको बाद में मिलते हैं वो पैसे, फिक्स टाइम है, तो बहरहाल जब भी पैसे मिलेंगे आपको तो फिर आपको पिछले सालों की भी ज़कात अदा करनी होगी। एक और सवाल है, वो सवाल ये था कि मुझे पूछना था कि लोन के लिए घर, लोन लेकर घर बनाना कैसा है और मोबाइल में लोन लेना कैसा है। लोन अगर बगैर सूद के मिले तो बिल्कुल लिया जा सकता है और उससे आप घर भी बना सकते हैं, लेकिन सूदी लोन लेकर घर बनाने की बिला ज़रूरत शरई हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आम तौर पर लोग जिस तरह घर बनाते हैं उसमें ज़रूरत शरई बहुत कम मुतहक्कक जो है वो होती है, तो बहरहाल यूं सूद के ऊपर लोन लेकर बनाना ये जायज़ नहीं है। हाँ, वैसे आम लोन मिल रहा है तो आप उसको लेकर शरई एतबार से घर बना सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। एक सवाल ये है कि अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज में इमाम के पीछे खड़ा हो और आदत के तौर पर गलती से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे तो क्या नमाज हो जाएगी। इमाम के पीछे जो है वो किरात करना जायज़ नहीं है। जब किरात करना जायज़ नहीं है तो जब इमाम तिलावत कर रहा है उस वक्त कोई और चीज़ भी जो है वो पढ़ने की उसे इजाज़त नहीं है, जबकि वो इमाम बुलंद आवाज़ से जो है वो किरात कर रहा हो, अगर आहिस्ता आवाज़ से तिलावत कर रहा है तो सना जो है वो मुक्तदी पीछे पढ़ सकता है। तो दुरूद पाक पढ़ना भी इमाम के पीछे किरात के मौके के ऊपर ये जायज़ नहीं है। जी, मज़ीद कॉल दीजिए।
उसके साथ से सवाल ये है कि कस्टमर कोई चीज खरीदते वक्त ये कहते हैं कि हम लेकर जा रहे हैं, अगर पसंद ना आया तो वापसी या तब्दील करवाएंगे, और इसमें दिनों की कैद नहीं होती, क्योंकि कस्टमर बाज़ का दूसरे शहर या गांव का भी होता है जो कि एक हफ्ते या दो हफ्ते बाद जिसका आना होता है, तो इस सूरत में क्या हुक्म है।
जी, मजीद कौन?
उवैस नाम है तेलंगाना से। सवाल ये है कि दोनों भाइयों की दुकान में पार्टनरशिप है ना, एक के दो बच्चे हैं, मतलब दो घर उनके ना उसी में से चल रहे हैं, लेकिन एक का सिर्फ एक बच्चा है, अगर वो दुकान से चीज अपने चाचू को ना पता हो और वो लेकर मामू को या किसी और को सेल करे तो क्या उस पे वो हलाल है।
जी, मजीद कौन?
मैं पाक पतन से मोहम्मद साजिद बुस्तामी बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि मुक्तदी तो नियत करते हैं इमाम की के पीछे इस इमाम के, तो इमाम साहब वो कैसे नियत करते हैं, वो किसकी नियत करते हैं।
जी, पहला सवाल ये कि बाज़ जगहों पर कस्टमर ये कह के जाते हैं कि अगर पसंद ना आई तो हम जो है वो वापिस जो है वो कर देंगे, लेकिन पैसे देकर ही वो जो है वो लेकर जा रहे होते हैं, और या तब्दील जो है वो करवा लेंगे, कलर चेंज करवा लेंगे, साइज चेंज करवा लेंगे, यूँ मुख्तलिफ जो है वो बाज़ चीज़ों में होता है, कपड़ों में या शूज़ वगैरह के अंदर जो है आप जो है वो साइज़ के एतबार से चेंजिंग का पूछ कर जाते हैं और वो तब्दील होता है, तो इसमें हरज नहीं है, इस तरीके से जो है बेचा जा सकता है। अलबत्ता बहरहाल ये जो शर्त आपने जो है वो लगाई कर बेची है कि जनाब जो तब्दील करवाना है, ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये लगा कर ही जो है वो देना ही ज़रूरी हो, कोई एक साल के बाद भी अगर बोले आपसे ये चीज लेकर गया था तो पसंद नहीं आई तो वापस कर लें, तो बहरहाल वो वापस करना जो है वो मालिक के अख्तियार पर ही है। हाँ, एक होती है जिसको शरीयत में कहते हैं खियार शर्त, उसमें पैसे नहीं दिए जाते और ये कहा जाता है कि अगर ये चीज जो है वो आपको मैंने अगर ये चीज 3 दिन के अंदर जो है वो मैंने आपको पैसे दे दिए तो ये चीज जो है वो सौदा हमारा कन्फर्म है, वरना जो है वो सौदा में कैंसिल कर दूंगा। तो वो खियार शर्त होती है, उसके बहरहाल अपने अहकाम है किन सूरतों में इजाजत है किन सूरतों में नहीं है, और फिर उसकी डेज की भी लिमिटेशन है। इमाम आजम अबू हनीफा अलैहि रहमा की मुफ्ताबी कॉल के मुताबिक उसकी 3 दिन जो है वो है, अलबत्ता दूसरा कॉल भी मौजूद है, तो बहरहाल उसके अंदर एक मजीद तफसील है। दूसरा सवाल हमारा कि पार्टनरशिप है दो भाइयों की, अब उनमें कोई उनका उनके बच्चे जो है वो बेचते हैं या लेते हैं। देखिए, अगर तो बेचते हैं तो बेचने के बाद बहरहाल उसके पैसे जो है वो मुश्तरका कारोबार में ही डाले जाएंगे, जो भी उसकी आमदन शो की जाती है उसी में डाला जाएगा। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ बेच कर उसके पैसे अपनी जेब में रख लेगा तो ये हरगिज़ जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि दोनों पार्टनर्स को जो है वो उनकी इजाज़त से ऐसा हो। और एक ये है कि यूं ही इसी तरह का मामला दूसरा भी है कि एक है कि बेचना, और एक ये है कि बच्चों का दुकान में से आके खुद ही जो है वो कोई चीज़ ले लेना, तो उसमें भी कि उर्फन इजाज़त होती है घर के बच्चों को कि इतनी छोटी मोटी लिमिट के अंदर जो है वो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो एक आध दफ़ा ले सकते हैं। तो अगर इस तरह की इजाज़त है जिस पर दोनों पार्टनर्स को कोई एतराज़ नहीं है तो ठीक है, इसके अंदर कोई हरज नहीं है, और अगर जो है वो एतराज़ है या जो है वो मना करते हैं तो फिर बहरहाल अगर लेंगे तो पैसे देकर जो है वो खरीदनी होगी या फिर लेने की इजाज़त नहीं होगी। तीसरा सवाल ये है कि जनाब मुक्तदी जो नियत करते हैं कि इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये बताइए कि इमाम क्या नियत करे। इमाम नमाज की नियत तो करेगा कि नमाज की नियत जो है वो शर्त है, नमाज की नियत किए बगैर इमाम की नमाज नहीं होगी, और नियत दिल के इरादे को कहते हैं। लेकिन अगर इमाम ने मुक्तदियों की नियत नहीं की तो भी उसकी नमाज हो जाएगी और मुक्तदियों की भी नमाज हो जाएगी। जी मजीद कौन
करना चाह रहा हूँ कि मैं ना मेरी वालदा कुछ दिन पहले फोत हो चुके थे, एक बात मैं कब्रिस्तान में दस्त लगा रहा हूँ, पाँव में लगा रहा हूँ, सर की तरफ लगा रहा हूँ, क्या ये लगाना जायज?
जी
मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि क्या जिंदा वालदैन को भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं?
जी
मेरा सवाल ये है कि अगर मुक्तदी इमाम के पीछे चौथी रकात में मिला तो उसको पहले कौन सी रकात अदा करनी पड़ेगी और वो किस तरतीब से आगे मजीद नमाज पढ़ेगा?
जी पहला सवाल है कि दरख्त जो है वो लगाना चाह रहे हैं वालिदा की कब्र पर, दाएं या बाएं या सिरहाने या पैताने, लगा सकते हैं या नहीं? लगा सकते हैं जबकि इसकी वजह से दीगर कब्रों की जगह ना घिरे, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो वक्फ होता है, तो वक्फ जो है वो अमवात मुस्लिमीन के लिए वक्फ है कि मुसलमान मुर्दों को जो है वो दफन किया जाएगा। अगर कोई इतना बड़ा दरख्त लगा देता है जिसकी वजह से पूरी कब्र ही जो है वो रुक जाएगी उस जगह पर, एक और कब्र नहीं बन सकती, तो उसकी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अपनी ही कब्र के सिरहाने और दूसरी कब्र और अपनी कब्र के दरमियान जो गैप होता है उसमें अगर कोई जो है वो छोटे पौधे वगैरह जो है वो लगा देते हैं कि वो तर रहेंगे, और जब तक सब्जा तर रहता है तो जिक्रुल्लाह करता है और उसके जिक्र से मय्यित को जो है वो उनसियत हासिल होती है, तो बिल्कुल इस तरह लगाने में हर्ज नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या जिंदा वालिदैन को भी इसाले सवाब कर सकते हैं? जी हाँ, वालिदैन हो या कोई भी शख्स हो, जिस तरह मरहूमीन को इसाले सवाब किया जा सकता है इसी तरीके से जिंदा अफराद को भी आप इसाले सवाब कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरा सवाल हमारा कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ चौथी रकात के अंदर मिला तो अब बकिया रकातें किस तरह अदा करें? अगर चौथी रकात के रुकू से पहले वो इमाम के साथ जो है वो मिल गया, इमाम के रुकू से सर उठाने से पहले पहले मिल गया तो उसे चौथी रकात तो मिल गई, अब इमाम के सलाम फेरने के बाद वो खड़ा होगा और पहली रकात पढ़ेगा, जो पहली रकात छूटी है सबसे पहली वाली वो पढ़ेगा, इस तरह की अगर पहले सना नहीं पढ़ी थी तो सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा और रुकू सजदा करेगा। और फिर किरात के एतबार से तो ये पहली थी, लेकिन तशहुद के एतबार से ये दूसरी करार पाएगी, एक इमाम के साथ जो पढ़ी वो और एक ये दोनों मिलके दो हो गई, तो दो के बाद कादा करेगा, यानी एक रकात पढ़ने के बाद कादा करेगा, फिर खड़ा होगा और खड़े होकर सूरह फातिहा और सूरत पढ़ेगा, रुकू सजदा करेगा, और अब बैठेगा नहीं बल्कि अब खड़ा हो जाएगा, और फिर आखिरी रकात पढ़ेगा और उसमें सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा और रुकू सजदा करके नमाज को मुकम्मल करेगा। जो इमाम के पीछे मसबूक मुक्तदी की जो रकात छूट जाती हैं किरात के एतबार से वो पहली शुमार होंगी, और तशहुद के एतबार से वो इमाम के साथ जितनी रकातें उसे मिली हैं उनके साथ मिलकर जो है वो तशहुद के एतबार से वो वाली शुमार होंगी, कि इमाम के साथ एक मिली और एक जो है वो इसने पढ़ी, तो ये दो हो गई, अब दो के बाद तशहुद करेगा। कुछ मैसेजेस भी हैं, उन दोबारा जो है वो शामिल करते हैं। एक सवाल ये है कि क्या ट्यूसडे को नहाना मना है? नहाना किसी भी दिन मना नहीं है, ना ट्यूसडे को, ना वेनेसडे को, ना मंडे को, किसी भी दिन आप नहा सकते हैं। एक सवाल ये है क्या किस्तों पर मोबाइल लेना जायज है? जी हाँ, किस्तों के ऊपर मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो वो खरीदना जायज है, जबकि उसमें नाजायज शर्तें ना हो। फी जमाना किस्तों के कारोबार के अंदर या किस्तों की खरीदो फरोख्त के अंदर नाजायज शर्तें लगा दी जाती हैं कि अगर किस्त लेट हुई तो उस पर जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा, या बास चीज़ों में इंश्योरेंस की शर्त होती है, या किस्त जो है वो अदा ना करने की सूरत में वो सामान वापस जब्त करने की शर्त होती है। तो इन नाजायज शर्तों की बुनियाद के ऊपर जो है वो जायज नहीं है। अगर कोई किस्तों का मुआहदा इन नाजायज शर्तों से पाक हो तो बिल्कुल आप जो है वो ले सकते हैं। एक सवाल यह है कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस जायज है? जी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नाजायज है, कि इसमें जुए का पहलू पाया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लिमिटेड होती है, एक साल की, दो साल की, तीन साल की। तो अब उसमें आप पैसे जमा करवाते हैं, अगर आप की तबीयत खराब हुई तो आप उससे फायदा उठा लेते हैं, और फायदा हो सकता है जितने आपने पैसे जमा करवाए उससे ज्यादा आप उठाएं। पॉलिसी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की थी मसलन 10,000 की, लेकिन उसके ऊपर आप बेनिफिट जो है वो 1,00,000 का उठा रहे हैं, तो कम पैसे लगा के ज्यादा पैसा उठाने के भी चांस है आपके। और दूसरा ये है कि आप पूरे साल आपके साथ कोई ऐसा मसला ना हो तो आपके वो जो 10,000 रुपए जमा करवाए हुए हैं जब मुद्दत पूरी हो गई उस पॉलिसी की तो वो आपके जाया हो गए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जुए में भी यही होता है कि आप कुछ पैसा लगाते हैं इस उम्मीद पर कि या तो इससे ज्यादा मैं हासिल कर लूंगा या फिर मेरे ये भी डूब जाएंगे। यही सूरत हाल यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में हो रही है कि जो आपने पैसे हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के तौर पे जमा कराएं या तो वो डूब जाएंगे या आप उससे ज्यादा उसके ऊपर जो है वो नफा उठा लेंगे, और ये जुआ है और इस्लाम में जुआ हराम है। कुरान करीम में इसको शैतान का अमल करार दिया गया, लिहाजा इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। एक सवाल यह है कि औरतों का बाजमात नमाज पढ़ना कैसा है? औरतों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आना मना है, उनको घर पर ही नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो लिहाजा औरतें मस्जिद में नमाज बाजमात के लिए नहीं आएंगी, और न ही औरत की इमामत करवा सकती है, ये भी जायज नहीं है। तो औरतों का मस्जिद में इमाम के पीछे आके नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, ना ही जो है वो इसकी इजाज़त है, मना किया गया है। एक सवाल ये है कि जनाब 1,000 रुपये में कितनी ज़कात जो है वो होगी? ज़कात जो है वो 2.5% जो है वो होती है, दूसरे लफ्ज़ों के अंदर आप कहें तो 40वां हिस्सा होती है। जितनी भी आप ज़कात जो है वो जितने भी माल आपका है जिसके ऊपर आप ज़कात देना चाह रहे हैं आप उसको 40 पर डिवाइड कर दें। 1,00,000 रुपए को आप डिवाइड करेंगे 40 पर तो 2,500 रुपए जो है वो निकल आएंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो भी अमाउंट हो आपका उसको आप 40 पर डिवाइड करेंगे तो जो आंसर होगा वही आपकी ज़कात की रकम होगी कि आपने वो अदा करनी होगी। नमाज के बाद दुआ करने की सही अहादीस जो है वो बता दीजिए। नमाज के बाद दुआ करना जो है वो अहादीस तय्यबा से साबित है, और फ़र्ज नमाज के बाद तो दुआ जो है वो कबूल होती है। इस बारे में कई अहादीस तय्यबा मौजूद हैं जिसके लिए आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से फतवा भी हासिल कर सकते हैं, और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की वेबसाइट से भी आपको ये फतवा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिल जाएगा। ایک سوال ہے کہ ہم نے کمیٹی ڈالی تھی 80,000 کی اپنی جیب خرچ سے، اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، آپ نے اگرچہ جیب خرچ سے ہی ڈالی ہو، جب آپ نے کمیٹی میں جو پیسے آپ جمع کروا رہے ہیں، وہ پیسے جتنے ان کے پاس جمع ہو چکے ہیں، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جاتے ہیں اور ان پر سال گزر جاتا ہے اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں، بی سی میں آپ نے کمیٹی میں جو ہے وہ پیسے جمع کروا رہے ہیں، اب تک کھلی نہیں ہے، لیکن کمیٹی میں آپ اتنے جمع کروا چکے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچتے ہیں اور سال بھی گزر گیا، تو اس پر زکوٰۃ تو لازم ہو گئی، ادائیگی ابھی لازم نہیں ہے، جب وہ آپ کو ملیں گے، کیونکہ کمیٹیاں پوری یکمشت ایک ساتھ ہی ملتی ہیں، تو جب وہ آپ کو ملیں گے تو آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر 2 سال کے بعد ملتے ہیں تو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی کال کیجیے۔
جی سر، میں پاک پتن سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے موٹر سائیکلوں کا شو روم مہنگا ہے سر، موٹر سائیکل ایک چیز 48,000 کی، ہم قسطوں میں 65,000 کی دیتے ہیں، 10,000 ایڈوانس اور 3,000 قسط لے کے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی مہربانی۔ تب
جی مزید کون؟
عبد المتین اتاری لیا سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد سے ایک منع کو روکتا ہے، اس کے بارے میں شریعت مطالعہ کیا حکم دیتی ہے؟
پہلا سوال قسطوں پر موٹر سائیکل، تو ہم نے جیسے قسطوں کے اوپر بیان کیا کہ قسطوں پر خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور کیش پر کسی چیز کی قیمت کم ہونا اور قسطوں پر زیادہ ہونا یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ مین چیز ہے کہ اس میں ناجائز شرطیں جو لگی ہوتی ہیں، قسطوں کی گاڑیاں انشورنس کے بغیر نہیں دی جاتی، یہ ناجائز ہے۔ دوسرا، قسط لیٹ ہونے کے اوپر آپ پینلٹی چارج کرتے ہیں، جرمانہ چارج کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قسط نہ دینے کی صورت میں، ڈیفالٹر ہونے کی صورت میں گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ جائز طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کے ایگریمنٹ ہے، آپ اس ایگریمنٹ کو دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کے پاس حاضر ہو کر ان سے جو ہے وہ چیک کروا لیں، اور اس میں جو وہ ناجائز شرطیں بتا رہے ہیں انہیں جو ہے وہ آپ ریموو کر دیں، اور اس کی جگہ پر کچھ متبادل جائز شرائط جو ہے وہ پوچھ کر وہ ایڈ کر لیں، اور پھر اگر آپ کریں تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کی اجازت جو فی زمانہ رائج ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مسجد میں بچوں کو لانے سے جو ہے وہ روکنا، ایسے چھوٹے بچے جن سے مسجد کی آلودگی کا خطرہ ہے، ناپاک ہونے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، یا وہ بچے جو کہ مسجد میں آ کر شور شرابہ کرتے ہیں، مسجد کا تقدس کا خیال نہیں کرتے، بالکل ان سے جو ہے وہ ان کو مسجد میں آنے سے روکا جائے گا۔ اور اس میں سب سے پہلا کردار جو ہے وہ گھر میں خواتین کا ہے کہ وہ ایسے چھوٹے بچوں کو ہرگز نہ بھیجیں۔ یوں ہی جو مرد حضرات بھی چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں، وہ خود بھی سوچیں کیا وہ اپنے آفس میں اپنے سیٹ کے پاس بھی اسی طرح بچوں کو جو ہے اچھلتا کودتا ہوا لے کر جاتے ہیں؟ نہیں لے کر جاتے، تو پھر جو سیٹھوں کا بھی خالق و مالک عز و جل ہے، جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے گھر میں جانا ہے، تو کیسے ہم کسی بھی بچے کو لے کر آ جائیں، وہ وہاں شور شرابہ کرتا رہے، دیگر نمازیوں کی نمازیں خراب کرتا رہے، اور مسجد کا تقدس پامال کرتا رہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ بچوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ گھر میں آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ پڑھوا لیں، یا گھر میں خواتین پڑھ رہی ہیں، بچے کو اپنے ساتھ، ہاں جب بچہ اتنا بڑا ہو جائے 7 سال کا اور سمجھدار ہو، تو پھر اور اسے تو نماز بھی آپ نے سکھا دی ہے ایک حد تک، اب اس کے بعد اگر آپ اسے مسجد میں لاتے ہیں تو اب مسجد میں لا سکتے ہیں، مگر اس صورت میں بھی اس کی سب سے آخر میں بنائی جائے، بچوں کی سب سے آخر میں بنانے کا حکم ہے، اسے اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ صفوں کے درمیان میں کھڑے ہرگز نہ ہوں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسرے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو